बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अमित साहब के साथ हफ्ता और सालों जॉब पेशेस को लेकर हाजिर खिदमत आगाज करते हैं। शुक्रिया आपके वक्त का। दो मौजूद पर इस्तफादा करना चाहता हूँ। पहला सवाल आज की नशिस्त का ये है कि हम ये देखते हैं दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कि हराम करार दिए गए हैं, उनके गोश्त को लोग नहीं खाते, उनकी चर्बी को लोग नहीं खाते, उनमें कोई शक और शुबा नहीं होता। लेकिन बाज़ ऐसी नई सूरतें सामने आती हैं जिसमें बरह रास्त गोश्त तो नहीं होता, बरह रास्त चर्बी तो नहीं होती, लेकिन उन्हीं के अजसाम से, उन्हीं के जिस्मों से कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके खानों में मिलाई जाती हैं। मसलन जैसे कि जेलेटिन है और भी इस तरह से मुतल्लिक चीज़ें होती हैं। पूछना मैं आपसे चाहता हूँ, कुरान मजीद ने हिल्लत व हुरमत की जो गाइडलाइन दी है, जो प्रिंसिपल दिया है, जब उसमें ये कहा है कि सूअर का गोश्त नहीं खाना, तो इसमें क्या वो तमाम चीज़ें शामिल हैं? और आम तौर पर जेलेटिन के बाब में ये इस्तदलाल किया जाता है कि शायद उसमें केमिकल कॉम्पोजिशन तब्दील हो जाती है प्रोसेस से गुजारने के बाद, लेकिन जो इस फन के माहरीन हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये हड्डियों से अखज़ किया जाता है, हड्डियों से तराशा जाता है, लिहाजा कोई केमिकल कॉम्पोजिशन तब्दील नहीं होती। तो इस सूरत हाल में क्या जेलेटिन का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर वो सूअर से एक्सट्रैक्ट की गई हो तो?
खुरानोश में क्या चीज़ें हराम हैं, क्या हलाल हैं, उसके उसूल और उनके इतलाक की सूरतें मैंने अपनी किताब मीज़ान में बयान कर दी। उस बाब का नाम ही खुरानोश है, खाना पीना। ये बात भी जगह जगह वाजे की है कि हमारे दीन में बुनियादी अबवाब इबादात के बाद तीन ही हैं, एक तथीरे बदन, दूसरे तथीरे खुरोनोश और तीसरे तथीरे अखलाक, जो सबसे बड़ा भाग। खुरोनोश की चीज़ों के बारे में एक तो उसूल बयान कर दिया गया है कि इंसान की फितरत में अल्लाह ताला ने खाने पीने की चीज़ों के बारे में भी तैयब और खबीस का फ़र्क रखा है। यानी बाज़ चीज़ें हैं जिनको दुनिया भर में किसी मज़हबी तालीम के बग़ैर भी इंसान खाना पसंद करता है, अच्छा समझता है, और बाज़ चीज़ों से इबा होती है, बाज़ से बिल्कुल गुरेज करता है, बाज़ को आँख उठा के देखना भी पसंद नहीं करता। मिसाल के तौर पर इंसान का अपना बौल व बराज है। जाहिर है कि इंसान को बनाया इस तरह गया है कि एक तरफ खाता है, दूसरी तरफ उसको निकलना भी है, तो बौल व बराज को कोई शख्स भी खाने के लिए तैयार नहीं होता या पीने के लिए तैयार नहीं होता। इसी तरीके से हमारे घरों से गंदा पानी बह निकलता है, कौन इसके लिए तैयार होगा कि इसको मशरूब वक्त समझ कर पीना शुरू कर दे? तो बाज़ चीज़ों के बारे में ये बिल्कुल वाज़ है सूरत हाल। इसके दो बुनियादी उसूल हैं जो जहन में रखने चाहिए खाने पीने की चीज़ों के बारे में। एक ये कि मुझे मेरी तबीयत और मिजाज के लिहाज से एक चीज़ से इबा महसूस होती है, घिन आती है, कराहत महसूस होती है, ये मेरे लिए जायज़ नहीं है, मुझे नहीं खानी चाहिए। इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क भी वाक़ हो जाता है, इसलिए कि मिजाज, उफ्ताद तबा, इल्फ व आदत इंसान पर असरअंदाज हो जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे वो चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक़ जानवरों के गोश्त से है, उसमें ये रहनुमाई कर दी गई है कि बहीमतुल अनाम सब के सब हलाल हैं, यानी चौपाए सब के सब हलाल हैं, मुआशी की किस्म के चौपाए, हाँ वो उनमें से हों जिन्हें हम पालते हैं, वो कुरान ने गिनवा दिए हैं 8 सूरतें, और ख्वा वो हों जो उनसे मिलते जुलते जंगलों में, जैसे भेड़ बकरियां हम पालते भी हैं, खाते भी हैं, और हिरन वगैरह वो जंगलों में मौजूद होते हैं। तो बहीमतुल अनाम हलाल है, इससे ये वाज़े कर दिया कि तमाम दरिंदे ममनू हैं जितने भी। अब दरिंदों के मामले में भी और इन मुआशी किस्म के जानवरों के बारे में भी कुछ चीज़ों से मुतल्लक इबहाम पैदा हो सकता था। इसको रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया है कि ऐसा होता है, दुनिया है ही इस तरह से कि इसमें चीज़ें स्याह और सफ़ेद में नहीं होती। तय्यिबात वो खबाइस में स्याह और सफ़ेद भी हैं, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि बैनहुमा मुश्तबिहात, उनमें ये भी लगता है कि ठीक ही है और उससे इबा भी होती है, फ़ैसला करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। उसमें अल्लाह ताला ने अपनी वही के ज़रिए से रहनुमाई कर दी है। वो रहनुमाई करते वक्त सिर्फ यही नहीं किया कि चंद चीज़ों के बारे में बता दिया है कि ये हराम है। जैसे चार चीज़ें कुरान ने बयान की हैं, ये आयत तीन चार मकामात पर आई है, हुर्रिमत अलैकुमुल मैता से शुरू होती है। तो सिर्फ यही नहीं किया बल्कि और भी बात चीज़ें वाजे की। मसलन ये बताया है कि खून तुम्हारे लिए हराम है। अब जाहिर है कि जिस वक्त हम जानवर को ज़बह करते हैं तो कितने ही अच्छे तरीके से क्यों ज़बह ना करें, कुछ ना कुछ खून लगा हुआ रह जाता है। आंतों से भी आप जितना चाहे निचोड़ लें, बहरहाल बारहा देखा है कि गोश्त पकाने के लिए रखते हैं तो बाज़ औक़ात उसमें से खून टपक रहा होता है। बाज़ जानवरों में भी इसकी नौईयत ऐसी होती है कि ये तो नहीं है कि एक बहते हुए खून का फवारा छूट पड़ता है, लेकिन कुछ ना कुछ खून वहाँ भी होता है। जैसे मछली है मिसाल के तौर पर, टिड्डी है मिसाल के तौर पर। इसी तरह का मामला हम देखते हैं कि बाज़ हलाल जानवरों के अज़ा में भी है, जैसे तिली है, जैसे जिगर है, यानी
कलेजी
वहाँ पर भी
जी
ऐसे ही लगता है कि जैसे खून से बनी हुई। तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको वाज़े फरमाया और कुरान ने भी इसकी तरफ बुनियाद फराहम कर दी कि मैंने जो चीज़ खून में ममनू करार दिया वो दमे मस्फू है, बहता हुआ खून है, गशिंग ब्लड, इसको ममनू करार दिया। इसी तरीके से सूअर के बारे में इबहाम था कि ये दरिंदा है या ये मवाशी की किस्म का है, ये आम बहस है, माहरीन हैवानात भी करते रहते हैं। चुनाँचे हमें मालूम है कि अब इसमें कोई शुबा ही नहीं कि इसको अगर आप इसकी सिनफ़ के लिहाज से देखें तो ये बकरी की सिनफ़ से है, लेकिन इसकी कुचलियाँ भी हैं, ये गोश्त भी खाता है। तो इस इश्तबा को दूर किया और फरमाया, लेकिन वहाँ एक लफ्ज़ का इजाफा कर दिया, जैसे दम के बारे में दमम मस्फूहा, बहता हुआ खून, गशिंग ब्लड। इसी तरह यहाँ पर भी ये नहीं कहा कि तुम सूअर को ना खाओ, बल्कि कहा कि लहमुल खिंजीर, खिंजीर का गोश्त ना खाओ। तो इस तरह ये बता दिया कि जितनी चीज़ें भी हराम की गई हैं उन सब चीज़ों में ये मलहूज रखा गया है कि जो उनका उर्फ इस्तेमाल होता है उससे बात आगे ना बढ़ाई जाए। देखिए, मेरा दिल नहीं चाहता, मुझे कोई चीज़ नापसंद है, मैं उसकी मामूली सी आलाइश से भी गुरेज करता हूँ, ये चीज़ अच्छी है, आप जितनी चाहे एहतियात कर लें, लेकिन अल्लाह ताला को तो सब इंसानों को हिदायत देनी होती है। तो उसमें पहली चीज़ जो कुरान मजीद ने वाज़े की है वो ये वाज़े की है कि उर्फ इस्तेमाल में लफ्ज़ का इतलाक किस पे होता है। जब हम गोश्त कहते हैं तो इस्तेमाल के उर्फ़ में गोश्त किसको कहते हैं, इस पर बड़ी नफीस बहस की है ज़मख्शी ने कशाफ में, मैंने उसको नकल भी कर दिया है, क्रोनोश के बाब में वो पूरी इबारत नकल करके बताया है कि उर्फ इस्तेमाल का इतलाक होगा, लिहाजा उर्फ इस्तेमाल से आगे आप नहीं ले जाएंगे। इसी उसूल का इतलाक करके फिर ये बताया जाता है कि मछली पर इसका इतलाक नहीं होगा, अगरचे उसमें भी कुछ खून मौजूद होता है, वो मरी हुई होती है तब भी आप उसको खा सकते हैं, टिड्डी पर इसका इतलाक नहीं होगा। इसी तरीके से तिली और जिगर के बारे में भी खुद रसूलुल्लाह ने इस बात को वाज़े कर दिया। तो इससे जो एक मज़हबी ज़ेहन के अंदर चीज़ पैदा होती है कि वो मुतल्लकात में मंतकी लिहाज से उतरता चला जाता है और अपने लिए बड़ी मशक्क़त और मुसीबत पैदा कर लेता है, उसकी नफ़ी कर दी। ये बता दिया कि नहीं, इस्तेमाल के उर्फ में लफ्ज़ जितना बोला जाता है बस उससे आगे हुरमत नहीं जाएगी, एहतियात एक अलग चीज़ है, वो जितनी भी तुम चाहे कर लो। इसी का एक लाजमी नतीजा निकला, वो ये है कि जिस वक्त, यानी पहली चीज़ तो ये हो गई, इसका लाजमी नतीजा ये निकला कि जिस वक्त किसी चीज़ पर कोई ऐसा कीमियाई अमल हो जाए कि उसकी हकीकत तब्दील हो जाए, यानी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, उसकी बहुत सी मिसालें हैं, जैसे शराब को सिरके में तब्दील कर लिया जाता है, जिस तरह से जानवर यानी हराम जानवर मरते हैं, ज़मीन में उनको दबा दीजिए, उसके ऊपर कोई सब्ज़ी उग जाती, कौन नहीं जानता कि उसमें उन्हीं के अज्ज़ा शामिल हुए हैं, लेकिन उस सब्ज़ी को कोई भी ममनू नहीं करार दे सकता। तो ये फिर क्या है, इस्तेहाला का तरीका, यानी एक हकीकत से दूसरी हकीकत में कोई चीज़ चली
अलग का
जाएगी,
मतलब जी
किसी चीज़ का एक हालत से दूसरी हालत में चले जाना, यानी उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। इसको कहा जाता है कि चूंकि एक कीमियाई तरीके से चीज़ की हकीकत बदल गई है, तो अब ये नहीं है कि ये सूअर से बना हुआ है या क्या है, जब ये चीज़ हो गई तो फिर उस पर हुरमत का इतलाक नहीं होगा। अगर गौर कीजिए तो ये उसी उसूल का दूसरा पहलू है, यानी ये बात कि उर्फ पर इतलाक किया जाएगा। जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उर्फ़ इस्तेमाल में, लोग उसको जिस मानी में लेते हैं, कुरान का मतलूब भी वो है। तो ये दोनों अल्फाज का इजाफा करके बता दिया, दो बातें हो गई। तीसरी चीज़ जो इन्हीं आयात से वाज़े की है वो ये है कि एक तो ये है कि आप गोश्त खा रहे हैं, और एक चीज़ ये है कि किसी चीज़ की कोई आलाइश रह गई, कोई छोटी सी चीज़ ऐसी है, जैसे मैंने अभी मिसाल दी कि आपने एक बकरी को ज़बह किया, बहुत अच्छी तरह खून निकल गया उसका, लेकिन देखें तो कहीं ना कहीं लगा हुआ तो है और आखिर तक रहेगा कुछ ना कुछ, तो इस तरह को गोया ला योबा बही में डाल दिया। ये बता दिया ना, इसकी परवाह ना करें, ऐसी चीज़ों के पीछे नहीं जाए। वैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि लोग बाज़ औक़ात मंतकी तरीके से फिर बड़ी दूर तक जाने की सही करते हैं। तो कुरान मजीद ने ये तीन चीज़ें बिल्कुल वाज़े कर दी, और सिर्फ कुरान मजीद ने वाज़े नहीं की, कुरान का तो तरीका ये है कि वो एक ख़ास उसलूब में बयान करता है चीज़ों को। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतलाक़ करके बता दिया, यानी ये बता दिया कि इसमें क्या चीज़ मतलूब है। तो तीनों चीज़ें हुरमतों में उसूल की हैसियत से मालूम हो गई। लिहाजा आप जब भी हम किसी हुरमत का इतलाक़ करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि अल्लाह ताला ने उसमें लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया है, उर्फ इस्तेमाल में उस लफ्ज़ का इतलाक़ किस चीज़ पर होता है, ना कि मंतकी लिहाज से लफ्ज़ का इतलाक़ किस चीज़ पर होता है। यानी मईता होने के एतबार से मंतकी तौर पर तो मछली भी मुर्दा है और बकरी भी मुर्दा है, लेकिन हम मछली पर इतलाक नहीं करेंगे, इसलिए कि उसके लिए मुर्दार का लफ्ज़ उर्फ़ इस्तेमाल में नहीं बोला जाता। तो ये बात बिल्कुल वाज़े कर दी, उससे दोनों नतीजे निकल आए। यानी ये भी निकल आया कि उर्फ़ इस्तेमाल तक महदूद रहे, गोश्त खाना ममनू है, बाकी चीज़ों पर ममानियत या हुरमत का इतलाक ही नहीं होता। यानी शेर है, चीता है, ये भी हराम है, जितने भी हैं। हमारे यहाँ लोगों ने सूअर को बहुत अहमियत दे डाली है, सारे दरिंदे हराम हैं, लेकिन क्या उनकी खाल को इस्तेमाल करना ममनू है? क्या उनके बालों को इस्तेमाल करना ममनू है? क्या उनकी हड्डियों से कोई दवा बना लेना ममनू है? कोई चीज़ भी ममनू नहीं है, उनका गोश्त खाना ममनू है। तो उर्फ इस्तेमाल तक महदूद रहेगा मामला हर हाल में। और मैंने अर्ज़ किया कि उसका लाजमी नतीजा ये होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन की सूरत में या इस्तेहाले की सूरत में हुरमत का इतलाक नहीं होगा। और दम मसफूक का इजाफा करके ये बता दिया कि ये कोई चीज़ नहीं है कि चूँकि हराम है तो इस तवे के ऊपर पकी होगी, वहाँ कोई इसका हिस्सा रह गया होगा, एहतियात अच्छी बात है, हुरमत का इतलाक इस तरह की चीज़ों पर नहीं होता। तो ये तीनों चीज़ें बिल्कुल वाज़े हैं, इसी उसूल पर जेलेटिन को देखना चाहिए, इसी पर बाकी चीज़ों को देखना चाहिए।
ठीक, तो बिल्कुल वाज़े हो गया। अच्छा हम सब, ये बात जो आपकी समझ में आई जेलेटिन के बाब में, उसूल की रोशनी में अगर इतलाक करें कि केमिकल कॉम्पोजिशन अगरचे तब्दील नहीं हुई, यानी जो कुछ हड्डियों में सूअर की मौजूद था उसी को एक्सट्रैक्ट करके जेलेटिन बना लिया गया है, लेकिन कुरान ने चूंकि लहमुल खंजीर कहा है, गोश्त खाना ममनू है, तो उसमें आगे कोई मामला हो रहा है तो उस पर हुरमत का इतलाक नहीं किया जाएगा। आप ही से हमने इसी जगह पे बैठ के सवाल पूछा था कि इंसानी सीने में सूअर के दिल की पैवनकारी हुई, तो आपने सूअर की जो हुरमत है उसका इत्तदात, उसका इतलाक आगे बढ़ के हकीकत को सामने रख के किया कि जिस तरह खुराक खा के जिस्म का हिस्सा बन जाती है, इसी तरह से सूअर का दिल भी जिस्म में नहीं लगाया जा सकता। तो वहां पर भी ये सवाल होगा, जब लहमुल खंजीर को खाने से मना किया है तो लहमुल खंजीर को लगाने में क्या प्रॉब्लम है?
लहमुल खंजीर से मना किया, यानी अल्लाह ताला ने, मैंने तो खाने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, यानी ये बताया है कि उसकी हुरमत का इतलाक किस पर होगा, लहमुल खंजीर पर होगा, उसके मुतल्लकात ज़ेरे बहस नहीं।
कुरान ने तो खाने को ज़ेरे बहस बनाया,
लारैब खाना ही ज़ेरे बहस है, लेकिन जिस चीज़ को खाना ममनू करार दिया गया है वो चीज़ क्या है, तो उसकी हकीकत भी आप मुतय्यन करेंगे तो उसी के लिहाज से करेंगे, और उसका इतलाक भी करेंगे तो उसी चीज़ पर करेंगे। तो मैंने उस वक्त ये बताया था कि जब हम गोश्त खाते हैं तो गोश्त खा के क्या चीज़ बनता है, हमारे आज़ा बनता है। तो यहाँ दर हकीकत इलामा यूलो अला है, ये हकीकत का इतलाक नहीं है, बल्कि बैन ही वो चीज़ हमारा जिस्म बन गई, तो इसलिए इस पर उसका इतलाक होगा। इसी तरीके से फलां चीज़ ला योबा बही है, यानी इसका कुछ ज़्यादा ख्याल नहीं करना चाहिए, ऐसे ही कोई एक ज़र्रा होगा, कोई हो सकता है कि कोई घी का इश्तराक हो गया हो, कोई पकाने का हो गया हो, कोई इस तरह की चीज़ हो, इस पर हुर्मत का इतलाक नहीं होगा। लेकिन एक दूसरा आदमी इस मामले में भी एहतियात का रवैया अख्तियार कर सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं। एहतियात अपनी ज़ात में पसंदीदा ही होती है, हुर्मत का इतलाक बारह नहीं किया जाएगा। तो ला योबा वही में भी थोड़ा बहुत इख्तलाफ हो सकता है। इसी तरह से इलामा यवलो अलह भी इज्तिहादी इतलाक़ है, इसमें भी कोई शख्स मुझसे इख्तलाफ कर सकता है, उसूल समझने चाहिए। तो मेरे नज़दीक वहाँ इतलाक होता है, इसलिए कि वो चीज़ बैन ही लहमुल खिंजीर ही है, यानी उसका जो दिल है वो लहमुल खिंजीर ही है, या किसी और हराम जानवर का है, शेर का है, चीते का है। फिर अर्ज़ कर दूँ कि ये खिंजीर बेचारा हमारे यहाँ बहुत बदनाम हो गया है, सारे दरिंदे ममनू हैं, खिंजीर पर तो उसका इतलाक इसलिए करके बताया है कि वो मुश्तबे है, यानी जहाँ हुर्मत बिल्कुल वाज़े है वो शेर और चीता है, या इस तरह के दूसरे जानवर जैसे कुत्ते हैं या बिल्लियाँ हैं, जितने भी दरिंदे या दरिंदों की किस्म के जितने जानवर पाए जाते हैं। तो ये बात कि ये चीज़ ला योबा व बही है, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, इसका फ़ैसला करेंगे ना कुछ लोग, तो ऐन मुमकिन है उससे कुछ इख्तलाफ भी हो जाए। इस तरह के इख्तलाफात में फतवे नहीं लगाने चाहिए, दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए। यही बात मैंने पिछले दिनों रज़ात की हुर्मत के बारे में अर्ज़ की थी, कि उसमें भी अप्रोच का या मामले को देखने का या जो मेथडोलॉजी आपने इख्तियार की है उसका कुछ इख्तलाफ हो सकता है। उसूल मैंने वाज़े कर दिया कि उर्फ़ इस्तेमाल का लिहाज किया जाएगा, चुनाचे उसके लाजमी दोनों नतायज ये मलहूज रखे जाएंगे और उन पर हुर्मत का इतलाक नहीं होगा। और इसी तरह का मामला छोटी मोटी किसी चीज़ के ऊपर, जैसे कि खून रगों को लगा रह गया, उस पर किया जाएगा, या मछली में भी कहीं लोग दिखा देंगे थोड़ा बहुत खून होता है, तो ला योबा भी ऐसी चीज़ों पर इतलाक नहीं किया।
ठीक, हम सब तक जो बात समझ में आई है वो ये कि सूअर का गोश्त खाना ममनू है, गोश्त उसके मुतल्लका चर्बी वगैरह आप नहीं खा सकते, लेकिन उसके जिस्म से कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट की गई है तो उसको खाने में कोई मुमानियत नहीं होनी चाहिए है, पहली चीज़। दूसरी ये कि केमिकल कंपोजिशन तब्दील हो जाए किसी चीज़ की तो उस पर भी मुमानियत नहीं रहती। और तीसरी ये कि उर्फ़ इस्तेमाली में जो चीज़ें हम जिस तरह बयान करते हैं खाने पीने की, उसमें कोई ज़र्रा आ गया किसी रेस्टोरेंट के अंदर, किसी जगह पर सूअर भी करीब में पकड़ा था, उससे कोई कतरा उठ के इधर आ गया, तो इस तरह की चीज़ों पर भी हुरमत का इतलाक नहीं किया जाता। अच्छा, हम सब ये जो उसूल आपने बयान किया, मैं थोड़ी सी जिसारत कर रहा हूँ इसी को समझने की, कोई शख्स ये भी तो कह सकता है कि जी आपने लहमुल खंजीर कह के खंजीर के गोश्त तक उसको रख लिया, तो कुरान ने तो ला ताकुलू भी कहा है, खाने पीने की बात की है, तो अब खाने पीने से आगे आप क्यों मंतकी तौर पर जा रहे हैं कि जी गोश्त को जिस्म का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब कुरान ने खाने पीने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो मतलब तो ये है कि पालोगे, काटोगे, ज़बह करोगे, मुंह में डालोगे, अंदर जाएगा, एक नफ्सियाती असर सब कुछ होगा। यहाँ पर तो यहाँ से उसका दिल उठाया, उठा के अंदर डाल दिया, तो जब आप लहम के बाब में आगे मंतकी तौर पर नहीं जाते तो फिर खाने पीने के बाब में उसको जिस्म में डालने में क्यों शामिल करते हैं?
नहीं, इसमें सही अप्रोच ये नहीं है। कुछ चीज़ें जिनका नफ्सियाती असरात होता है, जैसे मैंने एक चीज़ को देखा, देखने से मुझे कराहत होती है, घिन आती है। कुछ चीज़ें जिनका कोई इस तरह का नफ्सियाती असरात नहीं होता, इन्हीं हराम चीज़ों में, यानी कुछ चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही हैं, मिसाल के तौर पर बौलो बराज है, देख के ही आदमी को कराहत आती है, और अगर वो उसको मुंह में डालेगा तो उसकी नफ्सियात पर भी असर होगा। रियाज़ किया कि बाज़ चीज़ें इनमें ये पहलू नहीं होता, आप उनको हनीर मरिया खा सकते हैं, उनसे कोई कराहत नहीं होती, उनसे कोई नफ्सियाती असर भी नहीं होता, वो आपके जिस्म का जाके हिस्सा बनती। ज़ाहिर है कि हुर्मत की हकीकत तो यही है ना, यानी हुर्मत क्यों कायम की गई है, उसको आपके जिस्म का हिस्सा बनना है जाके, वो बैन ही जिस्म का हिस्सा बना के आपने उसके अंदर लगा दिया, ज़ाहिर है कि इस पर मैं इतलाक करूँगा उस चीज़ का। दूसरा आदमी कहता है जी इसमें तो खाना ज़रूरी है, लेकिन खाना ज़रूरी है ये बात ठीक नहीं है किसी तरीके से भी, यानी खा के होना क्या है वो अहम है, यानी मैंने जब किसी चीज़ को खाया तो क्या हुआ, वो मेरे जिस्म का जुज बन गई, वो मेरा बदन बन गई, और इसी चीज़ को पाकीज़गी के ख़िलाफ़ समझा जा रहा है। कोई चीज़ मेरे जिस्म को लग गई ये ज़ाहरी पाकीज़गी है, कोई चीज़ मेरे जिस्म का जुज बन गई ये बातनी पाकीज़गी है, किसी चीज़ से मुझे ज़हनी कराहत हुई ये ज़हनी पाकीज़गी है। तो ये सारे ही पहलू हैं जिनको दर्जा बदर्जा महफूज रखना चाहिए। इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि इसमें इस चीज़ की बड़ी अहमियत है कि कोई आदमी एहतियात का रवैया भी इख्तियार करता है, यानी हमें दीन बताते वक्त दोनों चीज़ें वाज़े करना होती हैं, ایسے ہم کہتے ہیں کہ یہ دو رکعتیں تو فرض ہیں، لازماً پڑھنی ہیں، اس کے بعد نوافل شروع ہو جاتے ہیں، مستحبات شروع ہو جاتے ہیں۔ حرمتوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ چیز تو بالکل ممنوع ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ البتہ یہاں احتیاط یا کراہت، آپ دیکھیں نا ہمارے فقہا نے اس میں مکروہ تحریمی، پھر مکروہ، مکروہ تنزیہی، یہ اصطلاحیں کیوں اختیار کی؟ اس لیے کہ درجے ہو جاتے ہیں، یعنی ایک چیز سے ہمیں زیادہ کراہت محسوس ہوتی ہے، ایک سے کم تر کراہت محسوس ہوتی ہے، ایک سے اس سے کم تر کراہت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہی معاملہ بعض چیزوں کے اثرات کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا لحاظ کر کے درجہ بدرجہ لوگوں کو متنبع کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر حرام کسی چیز سے کوئی چیز آپ نے کشید کر لی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بیان ہی وہ چیز نہیں ہے، لیکن کہاں سے کشید کی ہے؟ لحم سے کشید کی ہے، یعنی جس کے اوپر عرف کا استعمال ہوتا ہے وہاں میں اس کو بھی کھانا گوارا نہیں کروں گا،
شوربہ نکال لیا مثال
کچھ، تو وہ کشید کرنے کا جو عمل ہے وہ کہاں سے ہوا ہے؟ لحم سے ہوا ہے تو اس پر لحم ہی کا اطلاق کیا جائے گا، لیکن ان چیزوں سے ہوا ہے جن پر عام طور پر لفظ لحم نہیں بولا جاتا تو نوعیت بالکل تبدیل ہو جائے گی۔ تو ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھ کر دیکھا جائے گا، اور اس میں یعنی میتھڈولوجی کے لحاظ سے یا اصول کے لحاظ سے تھوڑا بہت اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے اختلافات میں ہر شخص کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔
ٹھیک، اچھا ہم سب آخری سوال، آپ نے فرمایا جس وقت قرآن نے کہا بھائی کھاؤ نہیں، تو ظاہری بات ہے کھانے کی حقیقت ہے کہ وہ چیز جا کے آپ کے جزو بدن بن جائے گی، اس سے آپ توانائی طاقت حاصل کریں گے، آپ کے جسم کا حصہ بن جائے گی۔ تو کوئی شخص تو یہ بھی کہہ سکتا نا کہ جب قرآن نے کہا کہ بھائی سور کا گوشت نہ کھاؤ، تو گوشت بھی اصل میں غذا تھی جو لوگ عام طور پہ کھاتے تھے سور سے، اب کل لوگ اگر سور کی جو چمڑی ہے اس کو چبانا شروع کر دیں تو ہم گوشت کی حقیقت کو دیکھیں گے کہ خوراک کے طور پہ سور کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو وہاں پر گوشت زیر بحث آ گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خوراک کوئی نہ حاصل کی جائے سور سے، تو کل کوئی اس کی چربی چبانے لگ جائے، چمڑی چبانے لگ جائے، یا اس کی ہڈیوں کے گودے کو چوسنے لگ جائے، تو ہم تو اسی حقیقت پہ جائیں گے نا جس حقیقت کا اطلاق آپ نے کھانے کے
لیے۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ چیز ناپسندیدہ ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ متعلقات کی چیزیں ہیں۔ حرمت کا اطلاق وہیں تک رہے گا جہاں تک قرآن مجید نے لفظ کو استعمال کیا ہے، یہی بتایا گیا ہے۔ یعنی دیکھیے کراہت تو مجھے کسی حضور نے اس کو کتنی خوبی کے ساتھ واضح کیا، گو آپ پکا کے رکھ دی گئی تو آپ نے نہیں کھائی، آپ کے سامنے ایک جلیل القدر صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پوچھا کیا حرام ہے، آپ نے فرمایا کہ نہیں لیکن میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں کیا چیز ہے؟ یعنی وہی چیز ہے کہ ہمیں کوئی چیز دیکھنے میں کراہت محسوس ہوتی ہے، گھن سی آتی ہے، نہیں اچھی لگتی، نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ طیبات ہیں جن کو حلال کیا گیا ہے، خبائص ہیں جنہیں ممنوع کیا گیا ہے۔ تو طیبات اور خبائص کا عمومی اطلاق ہوگا، وہ ہمارا مزاج، ہماری افتاد طبع، ہماری فطرت، ہمارا تجربہ کرے گا، لیکن جہاں جہاں کہیں اشتباہ تھا اس کو دور کر کے ایک اعتدال قائم کر دیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں تمہیں اس طرح دیکھنی ہیں، اس میں حرمت کا اطلاق یہاں تک ہوگا۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے کہ ایک چیز کشید کی گئی ہے، اس سے کیپسول بن گیا، دوا میں آپ نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، کچھ الکحل کے اندر محلل کے طور پر استعمال کر کے آپ نے ہومیوپیتھک دوا محفوظ کر لی، اس کو گوارا کیا جائے گا، لیکن اگر اسی سے کوئی کھانے کی چیز آپ نے بنا لی ہے تو میں مثال کے طور پر اس کو بھی استعمال نہیں کروں۔ تو یہ اس کے مدارج جہاں پر ہیں ان کا لحاظ ہر حال میں ہوگا، اور ہمارے فقہا نے بہت دقت نظر کے ساتھ اس طرح کی چیزوں پر اطلاق کیا ہے۔
بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سے بتائیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بعض باتیں آتی ہیں کہ آپ نے کہیں سے گزرتے ہوئے دیکھا لوگ سور کی چربی کو کشتیوں کے اوپر مل رہے تھے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے ان کے جو پٹھے ہوتے ہیں، تو آپ نے اس سے بھی منع فرما دیا کہ سور کی چربی کا یہ استعمال بھی نہ کرو، وہاں تو کھانا پینا بھی زیر بحث نہیں ہے۔
یہ وہ گوشت ہی ہے نا، چربی تو ہر حال میں گوشت ہی کا جز ہوتی ہے، تو سد ذریعہ کے طور پر آپ نے بہت سی چیزوں سے منع کیا تاکہ لوگوں کے اندر ایک کراہت رہے، وہ اس کے قریب نہ جائیں، اس کو عام استعمال نہ کریں۔ اس طریقے سے چربی حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیے جائیں گے تو کھانے کی رغبت بھی ہوگی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ملحوظ رکھی جاتی ہیں۔ سد ذریعہ کے احکام بالکل الگ ہوتے ہیں، اس میں تو کسی غلط چیز کی طرف جانے سے روکنے کے لیے بعض پابندیاں لگا دی جاتی ہیں۔
ٹھیک ہے، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ کیا جیلٹن کا استعمال دین اسلام میں ممنوع ہے یا جائز ہے؟ اصول کیا ہے؟ غام صاحب نے حلت حرمت کی بحث میں بڑی تفصیل سے گفتگو کا سامنے رکھا، انشاءاللہ مزید تفصیلات کو آگے اگلی نشست بڑھائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔